ओम शांति। हम बहुत सुंदर विषय पर इस सेमिनार में, मेडिटेशन रिट्रीट में ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। वैसे तो हम सभी है ही अध्यात्म प्रधान भारत देश के नागरिक, हमारी संस्कृति के नींव में ही आध्यात्मिकता के बीज पड़े हुए हैं। इसलिए पश्चिम के देशों और पूर्व के देशों में यही अंतर है कि वे लोग जब अपने दैनिक सांसारिक जीवन से उब जाते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो वे अधिक जातीय स्वतंत्रता ले लेते हैं या ऐसे नशीले द्रव्य लेकर बेहोश होके पड़े रहते हैं। लेकिन पूर्व के देशों में, विशेष भारत में, हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कुछ नवीनता, उमंग, उत्साह लाने के लिए शुरू से ही हमारी समाज रचना इस प्रकार की रही है कि समय प्रति समय ऐसे वार, त्योहार, व्रत, प्रसंग आते हैं जिसके निमित्त आध्यात्मिक जागृति हमारे में लाई जाती है। आज हम वो सारे आध्यात्मिक राज हर त्योहारों के पीछे जो है, हर रस्म और रिवाज के पीछे जो है, भक्ति के क्रियाकांड के पीछे जो ज्ञान है, वो भूल चुके हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ रीत रस्म कर लेते हैं, क्रियाकांड कर लेते हैं और अल्पकाल की खुशी प्राप्त करते हैं। परंतु फिर से ये समय आया है जब वो आध्यात्मिक राज समझने से हम अपने जीवन में सदा काल के सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। अब लक्ष्मी माना समृद्धि, समृद्धि का आह्वान करते हैं। सिर्फ धन की बात नहीं होती है, पर धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सुसंस्कार, संबंधों का तालमेल, ये सब कुछ एक प्रकार से समृद्धि ही है। तो हम समृद्धि का आह्वान करते हैं, उसमें भी देखो क्या करते हैं, तीन बातों का खास उस दिन ध्यान रखते हैं ना, लक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी के आह्वान के दिन, कि एक तो स्वच्छता। इसलिए दीपावली के दिनों में हम स्वच्छता विशेष रीति से घर में, दुकानों में, हर चीज साधन को साफ करते हैं, और दूसरा प्रकाश करते हैं, रोशनी, दीवा जगाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर उस दिन घर में आपस में कलह क्लेश है तो लक्ष्मी नहीं आएगी। आपस में तालमेल, प्यार, मेल मिलाप हो तो लक्ष्मी आएगी। तो हम बाह्य रीति से करते हैं, पर वास्तव में ये बात क्या बताती है कि धन समृद्धि वहां ही आती है और टिकती है, है ना। मेन बात है कि टिके, व्यक्ति मेहनत करके सफलता, समृद्धि, नाम मान शान, कीर्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, पर वो बनी रहे, टिके और हमारे में कोई विकृति ना आए, ये दोनों चीजें जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, हमें अपनी आंतरिक स्वच्छता भी करनी है। हमारे विचारों में शुद्धि, हमारी भावनाओं में शुद्धि, हमारी वृत्ति में शुद्धि, हमारी स्मृति में शुद्धि, जो हमारी ये आंतरिक जगत है ना, आत्मा में ये सब कुछ समाया है। अब आप समझ चुके हैं कि अंतर जगत मीन्स आत्मा की बात है, कि मैं आत्मा हूं और बाह्य जीवन में, बाह्य संसार में जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंतरिक स्थिति का ही एक प्रतिबिंब है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर बाह्य संसार को व्यवस्थित बनाना है तो हमें अपने अंदर की दिव्यता को जगाना है। तो विचार, वाइब्रेशंस, वृत्ति, स्मृति, भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस, ये हमारी आत्मा स्थिति से संबंधित है, आत्मा में ये समाया हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति हम वाणी द्वारा करते हैं, व्यवहार द्वारा करते हैं, चेहरे के हाव भाव से करते हैं और अंदर के ये भाव प्रकट होते हैं, पर सारा तो यहां समाया हुआ है। तो अंदर की शुद्धि, क्योंकि हम अपने आंतरिक आत्म स्वरूप को भूल गए, इसलिए अंदर की सफाई, शुद्धि के प्रति हमारा ध्यान ही नहीं रहा। जैसे हमें अपना बाह्य चेहरा घड़ी घड़ी देखने का, ठीक करने का, व्यवस्थित करने का अभ्यास है, हम बार बार दर्पण में देखते हैं, बाल ठीक करते हैं, चेहरा ठीक करते हैं, है ना, अपना पर्स में ही मेकअप बॉक्स रख लेते हैं, तो ये अभ्यास है, क्योंकि खुद को देह समझते हैं तो देह के संबंध में अवेयरनेस है, लेकिन हम आत्मा है इस सत्य को भूल जाने के कारण हमें स्वयं को देखना, स्वयं को ठीक करना, हमारी आंतरिक स्थिति को व्यवस्थित करना, एनरिच करना, डिसिप्लिन्ड करना, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो वास्तव में वो भी बहुत जरूरी है। तो जो स्वच्छता हम करते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम पवित्रता, ऑनेस्टी को अगर जोड़ दे कि भाई मुख से तो हम झूठ बोल लेंगे पर अंदर तो वो चीज फील होती है, दिल खाता है, और अंदर ये बाहर अलग अलग है, ड्यूअल पर्सनालिटी है, इसलिए ही हमारी फीलिंग्स क्रश होती हैं और तनाव बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी अनैतिकता ही हमारे तनाव का मूल कारण है। तो अंदर की प्यूरिटी, ऑनेस्टी, प्रकाश मीन्स नॉलेज। जैसे कोई भी चीज को अच्छी तरह से देखना है तो दोनों प्रकाश की जरूरत है, एक तो ये बाह्य प्रकाश की जरूरत है और दूसरा आंखों की रोशनी भी जरूरत है, तभी हमें ये चीज अच्छी तरह से दिखाई देगी। इसी प्रकार हमारे जीवन की, फिर वो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, व्यावसायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, अगर हम जीवन की हर बात को, हर क्षण को यथार्थ रूप से समझना चाहते हैं, दर्शन में समझना, देखना चाहते हैं, तो बाह्य जगत की रोशनी तो हमारे पास है, दुनियावी ज्ञान तो हम रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र का नॉलेज भी रखते हैं, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं नेचुरली उसका नॉलेज डेप्थ आप रखते हैं, वो हम सबके पास है, परंतु अंतर जगत का ज्ञान, तीसरा नेत्र, आंतरिक जगत का ज्ञान वो प्रकाश नहीं है, इसलिए हम यथार्थ रीति से हर व्यक्ति, परिस्थिति, वाइब्रेशंस, बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो कहानी में भी बताते हैं ना कि एक व्यक्ति लाइट के नीचे स्ट्रीट में कुछ ढूंढ रहा था, तो एक व्यक्ति वहां से गया, उसने देखा कि ये कुछ ढूंढ रहा है, जब काम करके लौटा तभी भी ढूंढ रहा था, तो उसने पूछा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, क्या गुम हुआ है? तो उसने बोला मेरी चाबी गुम हुई है। तो कहाँ गुम हुई है? बोला गुम तो वहां हुई है, पर वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा, है ना? तो गुम कहाँ से हुआ है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये जो अनुभूतियां है वो आत्मा से कनेक्टेड है, वो चीजों से, व्यक्ति से, परिस्थिति से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई सब कुछ है, पर वो मनोस्थिति नहीं है कि हम जो प्राप्ति की है हम उसका आनंद ले सके। तो अंदर का ज्ञान नहीं है, इसलिए बाहर ढूंढते रहते हैं। तो हमारे आध्यात्मिकता, हमारे हर त्योहार के पीछे की आध्यात्मिकता, प्रकाश माना सिर्फ रोशनी कर दी और अंदर अंधेरा है, वो नहीं। अंदर भी सत्य ज्ञान का प्रकाश जब आ जाता है और सारे बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये संसार का खेल क्या है, कर्म क्या है, जीवन क्या है, समय कौन सा है, यथार्थ धर्म कौन सा है, हमारा असली घर कौन सा है, ये बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो हम लोगों का और विद्यालय से जुड़े लाखों भाई बहनों का ये अनुभव है कि फिर जीवन की व्यावहारिक बातें बहुत सहज हम समझ पाते, बहुत सहज परख सकते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कितना करना नहीं करना, ये सब एकदम क्लैरिटी हो जाती है। कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होता है और जब विवेक स्पष्ट है, ज्ञान स्पष्ट है, तो फिर कोई हमें मिसगाइड भी नहीं कर सकता है। तो ये एक इतनी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर हमारे में आ जाता है, उसको ही गॉड्स पावर कहते। आज बताया ना कि परमात्मा कौन सा पावर देते, ये स्पिरिचुअल पावर देते। परमात्मा भौतिक नहीं है, शारीरिक, शरीरधारी नहीं है, जो वो कोई दुनियावी चीजें, फिजिकल पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर दे, वो बात नहीं है। हम तो वो ही उनसे मांगते रहते, परंतु वास्तव में वो हमें सद्विवेक देता है, जिस सद्विवेक के कारण सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि आती और वो सद्बुद्धि से हम हर बात को, हर क्षण को, हर व्यक्ति को, परिस्थिति के संकेत को, व्यक्ति के वाइब्रेशंस को हम समझ पाते हैं, परख जाते हैं, तो डिसीजन लेना भी सहज हो जाता है, मुझने की बातें नहीं रहती। इसलिए प्रकाश का संदर्भ सिर्फ बाहरी चकमक नहीं, लेकिन ज्ञान की रोशनी और प्यार, आपस में प्यार है तो कॉपरेशन है और कॉपरेशन है तो यूनिटी है। पर प्यार नहीं है, क्योंकि आज बॉडी कॉन्शियस बन गए तो प्यार भी वासना में बदल गया, प्यार अटैचमेंट में बदल गया है। और जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर एक निस्वार्थ आत्म स्नेह का विकास होता है। बताया ना कि हम सभी आत्माएं हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो अपनापन आता है। देश विदेश में हमारे जो भी सेवा केंद्र है, हम जो समर्पित टीचर्स हैं, भाई बहने हैं, सभी अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, जाति के हैं, अलग अलग भाषा प्रांत के हैं, पर एक कॉमन कॉर्ड है आत्मिक स्नेह। उस रूहानियत के कारण मिलके चलना, संस्कार मिलन, ये सहज होता है। आज आप देखिए सब कुछ है, चीजें क्वालिटी बन रही है, सिस्टम्स रिफाइन हो गए हैं, हर चीज बहुत तरीके से सेट की जा रही है। इसके बावजूद भी जीवन में संतुष्टता क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं? कारण यही है कि एक दो के स्वभाव संस्कार से ही हम डिस्टर्ब होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। जब आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर वो जागृति, अवेयरनेस आती, हम कौन हैं, किसके हैं और क्यों हैं? अगर दादी जानकी जी को आप सबने सुना हो तो दादी अक्सर ये तीन बातें बहुत पक्की कराती है और उनके हर लेक्चर में वो रिवाइज कराती है कि मैं तीन बार ओम शांति करती हूँ। पहली ओम शांति माना सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, अपने आप को एक्यूरेट रियलाइज करना, एस्टीमेट करना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी। दूसरा, मेरा कौन है? आज हर इंसान की अंदर से खोज क्या है कि इस दुनिया में मेरा कौन है ना? कहने के लिए तो अनेक अनेक मित्र संबंधी है, पर मेरा कौन है? क्योंकि हर संबंध में स्वार्थ है, मतलब है, तो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं। आज दो ये रिजल्ट हम सबके सामने हैं कि एक तो अकेलापन, किस कोई मेरा है ही नहीं, जहां देखो स्वार्थ है, मतलब है, तो एक तो अकेलापन और दूसरा खालीपन कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, अंदर से व्यक्ति खाली हो गया है, घर साधनों से भर गया है और व्यक्ति भीतर से खाली हो गया है कि जो प्यार, शांति, खुशी चाहिए वो नहीं है, वो सारी समृद्धि जो हमारी आंतरिक है वो हमारी गुम हो गई है। इसलिए प्रैक्टिकली मिलके चलना कितना मुश्किल है। जो संबंध हमने सुख के लिए सहयोग के लिए बनाए, आज वही संबंध दुख का कारण बन रहे। क्योंकि हम खाली है तो हम दूसरों को क्या देंगे? हम अपने आप में रोज परमात्मा से भरेंगे शांति, सुख, आनंद, प्रेम। ये कोर वैल्यूज है जो आज सुबह भी बताए थे आपको कि हरेक आत्मा के अंदर ये 7 क्वालिटीज है, और ये 7 क्वालिटीज ही अनेक वर्च्यूज, दिव्य गुण बन के, सद्गुण बन के हमारे जीवन में आते। जैसे सहनशीलता है, अगर प्यार है और शक्ति है तो मेरे में सहनशीलता आएगी, शांति है और शक्ति है तो मैं धीरज रख सकूंगी। तो हमारे कोर वैल्यूज पर ही हमें फोकस करता है, तो बाकी सारी क्वालिटीज, सद्गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आने लगते हैं। तो जो कहा कि जहां प्रकाश है, स्वच्छता है और प्रेम है, वहां लक्ष्मी का वास है, वहां समृद्धि है। तो वो चीज हम अपने जीवन में अपनाएं ना, सिर्फ दीपावली के दिन पूजा कर लेते हैं, इतने से थोड़ी कोई लक्ष्मी आ जाती है। हमें अपने कर्म में, आचरण में, दैनिक जीवन में इस बात को लाना है। और दूसरी बात कि आप सभी बिजनेसमैन, वहां भी देखो हमारी संस्कृति ने सिखाया है, हर शुभ कार्य में आप दुकान का उद्घाटन करते हैं, अकाउंट का रजिस्टर नया शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्वस्तिक निकालते हैं और उसमें 2 शब्द लिखते हैं। कौन से लिखते हैं? शुभ और लाभ। देखो हर एक जानते, हम स्वस्तिक निकालते हैं और शुभ और लाभ लिखते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। आध्यात्मिकता हमारे देश में पहले से थी, अब लोप कम हो गई है, या धार्मिकता, सांप्रदायिकता, बाह्याचार में बदल गई है। तो शुभ रीति से लाभ होना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि शुभ रीति से लाभ होना चाहिए। बेशक बिजनेस में लाभ होना चाहिए, उचित लाभ हमें होना चाहिए। कोई भी बिजनेस कोई खोट के लिए हम नहीं करते हैं, हरेक को कमाना है, हरेक को जीवन निर्वाह करना है। पर आध्यात्मिकता सिखाती है कि शुभ विधि से लाभ प्राप्त करो, पर वो विधि हम भूल गए, इसलिए शुभ शब्द को उड़ा दिया। और आज सिर्फ कहां हम फोकस्ड है, क्या याद रहता है? लाभ होना चाहिए, बस येन केन प्रकारेण लाभ होना चाहिए। पर समृद्धि का ऐसा है कि जिस मार्ग से कहते हैं ना धन आता है, वो उसी मार्ग से जाता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत मार्ग पर ही ले जाएगा। आप में फैशन बढ़ेगी, व्यसन बढ़ेगा, दिखावा बढ़ेगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत धारणा ही लाएगा। इसलिए सही तरीके से कमाते हैं तो निश्चिंत भी रहते हैं, संस्कार भी अच्छे बनते हैं। वो स्वस्तिक जो है वो स्वस्थिति का प्रतीक है, सृष्टि चक्र का प्रतीक है। आपका 4th मॉर्निंग लेसन शायद कॉल ऑफ टाइम है ना, उसी विषय पर है। उस दिन आपको बताया जाएगा कि वास्तव में ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र चार युगों का प्रतीक है। हमारी आत्मा स्थिति बदलती है, ऐसे संसार का स्वरूप बदलता है। जब हम शुद्ध सत्य और श्रेष्ठ थे तो प्रकृति भी सत्य थी और संसार स्वर्ग था। उस युग को सतयुग कहते थे। आज हमारी आत्मा स्थिति भ्रष्ट हुई, हम नियम मर्यादा में नहीं है, प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, उपद्रव मचा रही है, तो दुनिया भी नर्क कलयुग दुख का संसार बन गया है। तो ये भी यादगार है, शुभ और लाभ लिख देते हैं, स्वस्तिक निकाल देते, पर ये क्यों है, राज क्या है, वो नहीं जानते हैं। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमें वो समझ में आता है, हमारे में जागृति आती है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहां हमें कैसे अपने आंतरिक गुणों के अनुरूप हमें अपना कर्म व्यवहार करना है या व्यापार की लेन देन करनी है। और जब हम अपने इनर वैल्यूज के अनुरूप करते हैं तो दिल खाएगा नहीं, चिंता और भय नहीं रहेगा। पर जब हम अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप के विपरीत कुछ भी करते हैं तो ये कुदरती व्यवस्था है कि दिल खाएगा, भय और चिंता आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम कैसे उस अवेयरनेस को बनाए रखें। और तीसरी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे भौतिक जगत का सूर्य है, आप उनके सन्मुख है तो परछाई आपके पीछे पीछे आते। जब आप उस सूर्य से विमुख हो जाते हैं तो फिर परछाई पीछे पीछे नहीं आती, वो अलग दिशा में चली जाती है। सेम चीज, सोर्स परमात्मा वो इटर्नल सोर्स है जिससे हमें सदा काल के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति मिलते हैं। आत्माएं तो जैसी है ऐसा ही बनावटी, दिखावटी, मिलावटी चीज देता है। आप अनुभवी है, दुखा खाते हैं, दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मिलावट है तो हमारे हर देन में, लेन देन में, हर व्यवहार में वो मिलावट, बनावट, दिखावट ही होती है। परमात्मा एवर प्योर है, सुप्रीम है, ऑलमाइटी है, कल्याणकारी, इसलिए वो सदा देता है और शुद्ध देता है। इसलिए जब हमारा उनसे योग है, हमारा उनसे प्यार है, उनसे संबंध है, उनकी स्मृति रहती है, तो अपने आप हमारे अंदर, हमारे वचन में, कर्म में, विचारों में, वृत्ति में श्रेष्ठता आती है, उच्चता आती है, शुद्धता आती है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठते हैं तो ऑटोमेटिक भौतिकता हमारे पीछे पीछे आती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति पहले धन के पीछे दौड़ता है, पर जब व्यक्ति स्वयं महान बन जाता है तो धन उसके पीछे दौड़ता है। तो हमें ये भी एक जीवन में पुरुषार्थ साथ साथ करना चाहिए। बेशक धन कमाने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, साथ साथ अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें शुद्धि आएगी ऑटोमेटिक समृद्धि पीछे आएंगी और जीवन में जो बातें आएंगी वो हमें बहुत छोटी महसूस होगी, हमें भारी और मुश्किल नहीं लगेगी। तो यही चीज इस विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। अब आप ये कहने का अर्थ, अब आपको आज सुबह से लेकर जितने भी सत्र हुए हैं, इससे मैं समझती हूँ एक केंद्रवर्ती विचार बिंदु आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कुल मिलाकर खुद पर फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है, हमें अपने आप को समृद्ध और डिसिप्लिन करने की जरूरत है, क्योंकि हम वो केंद्र बिंदु है। मैं आत्मा जीवन का केंद्र बिंदु, मैं हूं तो जीवन है, और मैं निकल जाऊं तो जीवन समाप्त है। अभी ही कोई कहां का जो धनाढ्य अरबोपति था, जिसका सारा आया था कि सोने के सिंहासन, सोफा, रूम, ये वो, शरीर छोड़ दिया, क्या हो गया, खत्म, सब कुछ यहाँ रह गए। तो आत्मा हम हैं शरीर में तो जीवन है ना, मैं इस जीवन का केंद्र बिंदु हूं। और इसलिए जब हम शक्तिशाली है, सेंसिबल है, पावरफुल है, स्टेबल है, तो जीवन की सारी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, फिर वो कार्यक्षेत्र की है, पारिवारिक है ना, व्यक्तिगत है, ये सब अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। इसलिए हमारे में सेंस और शक्ति दोनों है तो बाकी सभी बातों को सुलझाना, पार करना और आगे बढ़ना बहुत सहज हो जाता है। तो यही चीज इसमें बताई है कि अब बैक टू सेल्फ होने की जरूरत है। हम स्व से भटक गए और संसार में बिखर गए, परंतु वास्तव में देखिए हम केंद्र में, आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष के समान, बीज क्वालिटी होगी तो बॉडी भी क्वालिटी मिलेगी। और ये चीज आपने रामचरितमानस में भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें भी ये बताया है कि ये जो बीमारियां हैं, आयुर्वेद कहता है ना कि कफ और पित्त और वायु का इम्बैलेंस होता है तभी बीमारियां आती है और दुख दर्द अनुभव होते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति काम वासना के वश हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई, क्रोध के वश हुआ तो पित्त की उत्पत्ति हुई, और लोभ के वश तब कफ की उत्पत्ति। और इसलिए गीता में भी कहा है काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। तो ये क्या बताता है कि जब हमारी वृत्ति प्रवृत्ति विकृत हुई तब बॉडी में भी ये चीजें इम्बैलेंस में आई और बीमारियां शुरू हुई। इसलिए कहते हैं योगी थे तो निरोगी थे, शरीर भी कंचन काया थे, भोगी बने तो रोगी बन गए और आयु भी कम हुई, अकाल मृत्यु भी बढ़ गए। तो इसमें भी देखो, जैसी मैं आत्मा वैसा शरीर, शरीर आत्मा के कर्म के आभारी। इसलिए जैसे सोना शुद्ध है तो ऑर्नामेंट भी शुद्ध सोने का बनेगा, पर सोने में मिक्स है तो ऑर्नामेंट भी मिक्स धातु का बनेगा। तो आत्मा में जब अज्ञानता, विस्मृति और उसके कारण विकृतियां आती है तो बॉडी भी इस प्रकार की मिलती है। रिलेशनशिप्स, हमारे जो भी संबंध है ना, वो हमारे कर्मिक अकाउंट के आधार पर ही है ना। ऐसे ही कोई एक्सीडेंटली थोड़ी जीवन में मिल गया। हमारे आपसी संबंध भी कर्मिक अकाउंट के अनुसार, हम कहते हैं मुझे ही ऐसे क्यों मिले, पर वही चीज फिर से हमें सोचना चाहिए कि मुझे ही क्यों मिले। जरूर मेरा कोई कर्मिक अकाउंट है। हम कहते हैं ना कि बाकी सबके साथ वो बहुत प्यार से चलते हैं, बात सुनते हैं, कॉपरेट करते हैं, पर मेरी नहीं सुनते। मैं ही जो मेरे साथ ही वो ऐसे चलते हैं, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसे चलते हैं? अगर वो बेसिकली व्यक्ति खराब होती तो सबके साथ ऐसा चलती ना? मीन्स वो मूल रूप से ऐसा नहीं है, पर मेरा उनका कर्मिक अकाउंट ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो देखो, संबंध भी जीवन में जो मिलते हैं, पर्टिकुलर हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस प्रकार के माता पिता, भाई बहन, पत्नी बच्चे, ये जो रिलेशंस है वो कर्मिक अकाउंट किया, वहां भी हम ही केंद्र बिंदु है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आत्मा में जितनी शक्ति होंगी उतनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह उठाएंगे और फिर भी लाइट रहेंगे। हमारी बड़ी दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। हम दादी के समय भी, दादी को शरीर छोड़े 10-12 साल हुए, पर दादी के समय भी हम लोग लगभग 16,000 समर्पित बहने, 8,00,000 भाई बहने, 8,000 से अधिक केंद्र। अब इतना कारोबार करने में कई बार मीडिया वाले या मेहमान दादी से पूछते थे कि दादी आपको इतना कारोबार संभालने में हेडेक नहीं होता है? तो दादी बहुत इजी जवाब देती थी कि मैं अपने आप को हेड समझूं तो मुझे हेडेक होवे ना, मैं तो अपने आप को हेड समझती नहीं हूं, मैं तो बाबा की हैंड हूं, बाबा की राइट हैंड हूं। तो जब हम अवेयर हैं, एम्पावर हैं, नॉलेजेबल हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इजीली उठा सकते। यहां ये नहीं सिखाया जाता है कि योगी बन के कोने में बैठ के पलथी मार के योग करो, नहीं, हम भी हर एक अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और ही हम एफिशिएंट बनते हैं, ज्ञान और योग से हम अधिक जिम्मेवारियां उठा सकते हैं और फिर भी हमारे में नम्रता रह सकती है, ईगो नहीं आएगा, हम अपने आप में इजी एंड लाइट रहेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम अच्छी तरह उठा सके, अदा कर सके, उसके लिए भी तो स्वयं की स्थिति में ही तो शक्ति चाहिए। कार्यक्षेत्र, कल भी मैंने बताया था कि जिस भी कार्यक्षेत्र में हम जाएंगे, हम अपनी कमी कमजोरियां या अच्छाइयां और विशेषता के साथ ही जाते हैं। जहां हमारी अच्छाइयां हमें सफल होने में मदद करती है, वहां हमारी कमजोरियां हमें नीचे भी गिराती। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, आप देखिए, सत्यम कंप्यूटर का एग्जाम्पल है कि खुद ने ही एक लोभ वृत्ति के कारण खुद की ही कंपनी में घोटाला कर दी। इंद्राणी मुखर्जी का किस्सा देखिए, एक समृद्धि और धन की लोलुपता में उन्होंने अपनी ही परिवार में क्या कर दी। तो व्यक्ति मेहनत करके टॉप पर पहुंच जाता है, और जब हम सफल हो जाते हैं, शिखर पर पहुंचते हैं, तो हम समझते हैं हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। वहां हमारे संस्कार ही हमें धोखा देते, हमारी कमजोरियां ही हमें धोखा देती। तो वहां भी तो सेल्फ एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। तो सारा विश्व हमारी ही अंतर स्थिति का एक प्रतिबिंब है। अक्सर हम क्या कहते हैं, दुनिया खराब है, दुनिया ऐसी है, पर हम खराब है ये कोई भी रियलाइज नहीं करता। लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, सरकार ऐसी है, संसारी ऐसा है, बाकी सब कुछ हम समझ रहे हैं, पर खुद को ही नहीं समझ रहे हैं कि शुरुआत तो हम ही कर रहे हैं। जाने अनजाने हम सबके द्वारा कोई ना कोई नेगेटिविटी एक्टिव होती है और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होती है। आज अगर ये दुनिया कलयुग बन गई, संसार नरक बन गया, आज चारों ओर भ्रष्टाचार मिलावट बनावट हो गई, तो उसका कारण कौन है? कौन है? हम ही सब है। कम ज्यादा मात्रा में हम सभी ऐसा करते हैं, तभी तो ये रिजल्ट आया है। अब अगर हम अपनी पॉजिटिविटी को एक्टिव करें, हर एक अपने अपने प्रोफेशन में, आप डॉक्टर है तो वहां, इंजीनियर है तो वहां, टीचर है तो वहां, बिजनेसमैन है तो वहां, हर एक अगर अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अच्छाइयां विकसित करें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए उसका प्रयोग करे, तो हम इस दुनिया को अच्छी बना सकते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, बेहतर संसार के लिए आप क्या सहयोग दे सकते हैं। हम हर प्रोफेशन वालों के वर्कशॉप करते थे और उनको कहते थे, आपके क्षेत्र में अच्छाइयां अपना के आप इस दुनिया को अच्छा बनाने में सहयोग दे सकते। तो अब आवश्यकता है बैक टू सेल्फ, स्वयं के प्रति आने की, बैक टू सोर्स, परमात्मा के प्रति आने की, बैक टू नेचर, हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज के तरफ वापस आने की जरूरत। और इसलिए यहां पहला पाठ आज सुबह आपको यही पढ़ाया कि आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा। ये पाठ पक्का होगा अपने आप आपको जीवन में, आई वॉन्ट पीस, आप पीस लवर बन जाएंगे और फिर आप जो कुछ करेंगे वो अपने आप शांति से करेंगे और फिर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या ऑटोमेटिक आप ऐसी सेट करेंगे कि आप उसको सस्टेन कर सकें। तो हमें फिर से बीज के तरफ जाने की आवश्यकता है ना, पेड़ को हरा भरा रखना है तो एक एक पत्ते को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, हमें बीज को, जड़ों को सींचने की जरूरत है। तो हर पत्ता डाली को पानी रस पहुंच जाता है। हमें एक एक बात के पीछे हम लगते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बना रहे हैं कि हम बीमारी को कंट्रोल कर सके। ज्यादा से ज्यादा हम कोर्ट बना रहे हैं, वकील तैयार कर रहे हैं कि सारे केसेस को हम निपटा सके, पर लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं, बीमारियां आवे ही नहीं, गुनाह हो ही नहीं, वो रूट को हम क्योर नहीं करते। यहां अब हमें बीज, मैं खुद बीज हूं अपने जीवन का, मुझे खुद के विचार, संस्कार, कर्म को क्वालिटी बनाना है। और हम सबका अनुभव है कि इस राजयुग में जो दो मुख्य अभ्यास हम करते हैं, चित्र में बीच में बताया है, एक सेल्फ कॉन्शियस बनने का और दूसरा गॉड कॉन्शियस बनने, तो हम लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि ये अभ्यास करने से हमारे मन वचन कर्म में ऑटोमेटिक कितने अच्छी क्वालिटीज धारण हो जाती है। सोल कॉन्शियस बनने से हम अपने विचारों में एकाग्रता ला सकते हैं। देखो, जैसे ही आप सोचेंगे मैं आत्मा हूं, आप खुद के प्रति फोकस हो जाते हैं, आपके विचारों में केंद्रितता आएगी, क्योंकि आत्मा बिंदु है, बीज है, तो मन उसके प्रति समेटने लगता है। और जब आप गॉड कॉन्शियस बनते हैं तो आपका मन इतना प्योर और पीसफुल बनता है कि क्लैरिटी आती है आपके थॉट्स में। इस प्रकार सोल कॉन्शियस, जब हम अपने सत्य आत्मा स्वरूप से लगते हैं तो हमारे शब्दों में सच्चाई आती है, और गॉड कॉन्शियस बनने से हमें परमात्मा का प्यार इतना मिलता है, हमारे शब्दों में मधुरता आती है, फिर लगेगा मुख से वाणी नहीं अमृत निकल रहा है। सोल कॉन्शियस बनने से कर्म में परफेक्शन आएगी, क्योंकि हमारी क्वालिटीज इमर्ज होने लगती, और गॉड कॉन्शियस बनने से कर्मों में परफेक्शन आने लगेगी, फिर भी ट्रस्टीशिप रहेगी, आप में ईगो नहीं आएगा, निमित्त भाव रहेगा, मालिकपन, मैंपन नहीं आएगा, मेरापन नहीं आएगा, हम निमित्त है, ट्रस्टी है, परमात्मा मालिक है, ये हमारे अंदर भाव रहेगा। और ऑटोमेटिक जब मन वचन कर्म ठीक हो जाएंगे तो इनसे जुड़ा हुआ समय ऑटोमेटिक सफल हो जाए, फिर हमारा टाइम उत्पादक बन जाएगा, और गॉड कॉन्शियस बनने से हमारे हर सेकंड में पावर भर जाएगी, हम इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो लोग कहेंगे एक नजर हमारे पर डालो। क्यों कहते हैं हमें नजर से निहाल करो, हमें दृष्टि दो, हमें दृष्टि से शक्ति दो, वो हम गॉड कॉन्शियस बनते हैं तो वो पावर हमारे में आता है, और उसको फिर हमें सस्टेन करना है। अपनी दिनचर्या आप रिसेट करिए, रोज क्वालिटी इनपुट करिए ज्ञान का, रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, इस प्रकार रूटीन और इस प्रकार रोज के अभ्यास से फिर वो नेचुरल बन जाता है, नेचुरल बनता जाएगा। इसलिए अभी तो आज एक ही आपका लेसन हुआ है जो बेसिक नॉलेज, आगे तीन मॉर्निंग सेशन होंगे और अवेयरनेस आएगी, पर उसके बाद आप उसको मेंटेन करें, सस्टेन करें, अपनी दिनचर्या में लाएं, कोई ना कोई हमारे राजयोग केंद्र से आप कनेक्ट रहें, अनुभवी राजयोगी बहनों से मार्गदर्शन ले, ये जरूरी है। जैसे शरीर का रूटीन बनाया है, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज श्रम करते हैं, रोज आराम करते हैं, ये रूटीन है ना सबका। कितना भी बिजी है, मेहमान है, फिर भी खाना खाते हैं कि नहीं खाते, थोड़ा बहुत सोते हैं कि नहीं सोते, इसमें कभी कोई नहीं सोचता है कब तक खाना है, कब तक सोना है। हमने इसको लाइफस्टाइल के रूप में अपनाया। सेम आत्मा की भी आप दिनचर्या बना लेंगे, नियमित ज्ञान योग का ध्यान करेंगे, तो फिर ये अवेयरनेस ऑटोमेटिक नेचुरल हमारी स्टेज बनेगी, फिर हमें जरा भी मुश्किल नहीं लगेगी। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहूंगी। लक्ष्मी बहन, वो अपना अनुभव बताएगी। लक्ष्मी बहन वो मलेशिया से आई हैं और विद्यालय से काफी सालों से जुड़ी हैं, खास सेवा के लिए पिछले 1.5 साल से वो यहाँ आबू में आकर रह रही है। तो 3 मिनट में वो अपना परिचय देंगी और अपना अनुभव शेयर करेंगी कि कैसे जीवन में इन्होंने सस्टेन किया तो लाइफ कैसे बदल जाती है, उच्च बन जाती है। वो इंग्लिश में बोलेगी।
Om Shanti. My name is Lakshmi. I brought in Malaysia and currently I based in India. The physical body age 52. I was in this Gyan for 32 years. That means I came after just finished my study, just about start working. And I like to share some experience on this. Okay, how am I practicing this knowledge in my life? Okay, this is knowledge, this is the one keep me in this life. When I came to this introduction of Brahma Kumaris, the word yoga is bubbling in my mind. I was thinking, what is yoga? Because I heard this when I was in high school. I was thinking too much about this, and then I come to know about one day about Brahma Kumaris, and I just come to this. I was just coming with a thought to know what is yoga. But then the knowledge from God, and the love I experience in my life keep me in this spiritual life. And I love this spiritual life because of the teaching, the proper teaching to discipline the self to live a spiritual life. That is make me to continue this life because the sustenance I'm getting. I've been sustained with God's love and the teaching every day experiencing me. How God is protecting my life. It says, if I be honest, he will take care of everything. 32 years he is taking care of me. What else I need in my life? That is my great fortune. So there's a few things. And I was working in business industrial. I complete business administration. And I was working in Malaysia and then I continue in Singapore, Changi airports. Working hours is very long, about 15 hours, 13 hours. But I don't feel like I'm working for very long hours, even there will be the days tired, because my consciousness is that many souls I'm meeting, it's my seva. I can do this seva, because operation of the flights, it will be taking thousands of people we will meet and all kind of background. And I will meet them for one time when I can serve them with the feeling of happiness I share with them. And I share with them is the love, must be a cheerful face all the time. My thinking is difficult, but I don't feel it's difficult because I like to do and I'm doing practically. That's keep me move and I'm continue working when I was there. And I find it's time for me now and I want to spend my full time in spiritual service. Currently I based in Shantiwan and I'm doing seva there. Om Shanti.
Thank you.